पूछिएगा, अभी आपने ज्योत निरंजन ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड देखे थे और एक ब्रह्मांड की भी विस्तृत व्याख्या देखी थी, और अब देखिएगा ये पूरे सभी ब्रह्मांडों का एक पूर्ण चित्र, ये ऊपर वास्तविक अनामी लोक, वास्तविक आगम लोक, वास्तविक अलक लोक, ये केवल हिंट है। इनकी बनाया जाए तो चित्र अलग से बनेगा, लेकिन हमने सतलोक तक पहुंचने की चेष्टा करनी है। ऊपर जाने के लिए फिर यहाँ प्रयत्न होगा, यहाँ से अगम अनामी अलक लोक की बात भूल जाना, यहाँ से तो केवल हमने सतलोक पहुंचना है। सतलोक के बाद यहाँ जाके आपने सोचना है कि आगे कौन से लोक में जाना चाहते हो या यहीं रहना, यहाँ कोई कष्ट नहीं। और यहाँ जाने के बाद आपकी फिर अपस्थिति कैसी होगी, अब देखिएगा। ये है सतलोक, ये असंग ब्रह्मांड दिखाई दे रहा, ये फिर यहाँ से शुरू करेंगे, आसानी से समझ में आएगा आपके। ये एक 21 ब्रह्मांड ज्योत निरंजन ब्रह्म के, और जिसमें ये एक ब्रह्मांड स्पष्ट नजर आ रहा है समझो, ये इसमें एक विभागीय मंत्री है समझो, ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ब्रह्मांड में, और इसके ये 21 ब्रह्मांड काल के, ये देखो फिर पूरे, ये जो छोटी मोटी टिक्कियां दिख रही है समझो ये ब्रह्मांड समझो, इसमें ऐसी ऐसी टिक्कियां हैं, लेकिन ये लाइट ठीक ना होने से स्पष्ट नजर नहीं आ रहे। तो ये 7 शंख ब्रह्मांड है, ये ब्राउन कलर के यानी भूरे रंग के, ये 7 शंख ब्रह्मांड किसके, परब्रह्म के, ये ब्रह्म के, ये परब्रह्म के, ये क्षर पुरुष के, ये अक्षर पुरुष के, और ये परम अक्षर पुरुष के, ये असंख, ये पूर्ण ब्रह्म के। पूर्ण ब्रह्म जो है वो ओवरऑल कंट्रोलर, कुल मालिक, जो इन पे भी मालिक है परब्रह्म के लोकों में और ब्रह्म के लोकों में, ज्योत निरंजन के ऊपर भी ये कुल मालिक है, इसका भी स्वामी है, सबका मालिक है, ये है वो कुल मालिक। और यही परमेश्वर, इसका नाम कबीर है, सतपुरुष, अकाल मूर्त, सबल स्वरूपी राम इसके उपमात्मक नाम है, जैसे प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, ये कोई नाम नहीं है, तो रैंक है, उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम अपने प्रधानमंत्री का कोई और होता है और वो मानुष जैसा होता है। अब देखिएगा ये आपके सामने आया, तो यही परमेश्वर ऊपर जब अलख लोक में होता है, अलख पुरुष कहलाता है, इसकी सथिति तेज बढ़ जाता है, जब अगम लोक में होता है तो इसकी सथिति और तेज बढ़ जाता है, और अनामी लोक में जाकर के फिर ये सब प्राणी जब वहां जाएंगे तो इसी यही परमेश्वर अनामी रूप में रहता है, नाम इसका कबीर देव ही रहता है। अब आपके सामने आ गया क्या स्थिति है ब्रह्मा विष्णु महेश की और क्या स्थिति है ब्रह्म परब्रह्म की। अब इन सब को जानकर अब हमने आगे चलना है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता काल है, ज्योत निरंजन है, यानी ये सदाशिव या महाविष्णु या महाब्रह्मा, और दुर्गा इनकी माता है। ये 10 मिनट का सत्संग यहाँ देना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले आपको शिव महापुराण दिखाऊंगा, ये पवित्र शास्त्र शिव महापुराण। अब क्या हो रहा है, जैसे ये दूसरे संत आज मार्गदर्शन करे, उन्होंने इन महापुरुषों भगवानों के प्रति नफरत पैदा कर दी है, कहते हैं इनका तो नाम भी नहीं लेना। फिर जब हम द्वेषता रहेगी हमारे अंदर तो हम कभी भी पार नहीं हो सकते। अब हमारे लिए तो कुत्ता भी आदरणीय है, हमने नफरत तो उसकी भी नहीं करनी, ये तो 3 लोक के भगवान है। हम इनके प्रति हे भावना करेंगे तो हम स्वयं हीन हो जाएंगे, हमारे अंदर नम्रता और निष्पक्षता और अद्वितीय भाव, हमारे अंदर द्वितीय भाव बना रहेगा, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अब देखिएगा ये शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये कोई नया शास्त्र आज नहीं बनाया दास ने, ये भी ध्यान रखना आप, और अंदर से भी देखिए, कई भाइयों को अनजान, क्योंकि एक ऐसा निर्मल ज्ञान है इसमें संशय उठना बहुत जरूरी है, कईयों को शंका हो जाती है कहीं महाराज जी कवर ऊपर अपना और बना रखा हो, अंदर से मटेरियल कोई और ठोक रखा हो, इसलिए ये अंदर भी दिखाना चाहेगा ताकि आपका ये 2 घंटे का समय व्यर्थ ना जाए, असमंजस ना रह जाए आपको। इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और ये कहां से प्रकाशित है, गीता मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। अब इसमें देखिएगा रुद्र संहिता और 100 नंबर पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे रुद्र संहिता और यहां लाओ 100 नंबर पृष्ठ पे यहां से प्रारंभ करेंगे। ये क्या होगा यहां नहीं जरा अब इसमें क्या है, ये शिव महापुराण है और ये प्रारंभ तो होती है महा इस काल पे सदाशिव महाशिव से और दुर्गा की महिमा से, ये पार्वती रूप में दुर्गा जो अभी दिखाया था प्रेम लोक में, और ये समाप्त होती है इसी के पुत्र त्रिलोकीय शिव के ऊपर। अभी तक ये संता के बुद्धि काम कर नहीं पाई क्योंकि इनको ये परम ज्ञान नहीं था जो वास्तव में हमारे पास पहले होना चाहिए था। अब यहाँ कहाँ से प्रारंभ करेंगे हम कि उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया दुर्गा को, उसी को महापार्वती कहो चाहे दुर्गा कहो भवानी कहो आदि माया को, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं ये शब्द याद रखना, गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है, वह शक्ति अंबिका कही गई है और उसी को प्रकृति यानी प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए प्रयोग है ये भी याद रखना। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी तीनों देवताओं की जननी पैदा करने वाली उत्पन्न करने वाली माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ स्पष्ट लिखा है, ये कोई आज नहीं बनाया दास ने कोई आज ही लिख कर प्रिंट करवा लिया हो, ये तो 5500 वर्ष पुराना इतिहास है और संस्कृत एज इट इज भी मेरे पास उपलब्ध है ये शिव पुराण संस्कृत में भी। नेता और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, यह भी कसर निकाल दी कि कोई ब्रह्म न रह जा वह कोई और होगी त्रिदेव जननी, ये वही 8 भुजा वाली दुर्गा है और इसको सदाशिव यानी काल के शरीर से निकाली गई थी, ये सृष्टि रचना से आपको ज्ञान होगा। आगे नीचे देखो ये है वे जो सदाशिव हैं उस उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर भी कहते, वे अपने सारे अंग पर अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। ये सदाशिव वही काल है और जो का रोल इसका पुत्र इसका बेटा करता है, राख रमाए रखता है जैसे वो करता है जिस स्थिति में इनको पैदा करता है, उसी को काल रूपी ब्रह्म, काल कहो चे ब्रह्म कहो चे सदा शिव कहो, ये काल जो काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है ये मिसप्रिंट है, ये साथ है दुर्गा को साथ रखते हुए अपनी पत्नी के रूप में के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था, कौन से का वो तमोगुण प्रधान अक्षेत्र बनाया था, उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं, वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है। वे दोनों प्रिया माने पत्नी और प्रियतम माने ये प्रिया और प्रियतम रूप में पति पत्नी के रूप में शक्ति और शिव ये काल और दुर्गा नित्य निवास करते हैं, काशीपुरी परमानंद रूपणी है हे शिव और शिवा ने, यानी प्रलय काल में भी कभी उसको अपने क्षेत्र के सानिध्य से मुक्त नहीं किया। नीचे देखो देवर से एक समय उस आनंद वन में कौन ब्रह्मा बोल रहा है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी और पुत्र की उत्पत्ति की जावे और पुरुष की उत्पत्ति सृष्टि की करनी चाहिए ये सोच कर ना देखो ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने बाम बांग के भाग के 10वें अंग पर अमृत मर दिया अर्थात पति पत्नी व्यवहार से किया तो फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बेटा पैदा हो गया, उसका नाम क्या रखा ये देखो शिव ने कहा, इस काल ने कहा, सदाशिव ब्रह्म ने कहा, काल ने कहा, वत्स पुत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु जी की उत्पत्ति काल से और दुर्गा से सिद्ध होगी। आगे देखो फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने बेटे नारद ने तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने जैसे विष्णु को दोनों के सहयोग से विष्णु उत्पन्न किया था मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया, अर्थात मेरा भी जन्म उन्हीं से हुआ। अब दो भगवानों की, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति किस से, काल से होगी। सदाशिव कहो, काल कहो, इसे ज्योति निरंजन कहो, ब्रह्म कहो। अब ये असमंजस में पड़ गया लेखक कि भाई शिव से शिव की उत्पत्ति लिखूं तो जची नहीं, क्योंकि इनको आप ज्ञान नहीं था। तो यहाँ गोलमोल करके ये आगे चले। अब नौवें अध्याय में फिर देखो स्पष्ट वर्णन हो गया कि ये तीन तो अलग हैं, ये चौथा इनका पिता अलग है। अध्याय नंबर नौ में यही रुद्र संहिता चल रही है। अध्याय नंबर नौ है ये, और इस ये यहाँ समाप्त होता है, इसके ऊपर का विवरण है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन तीन देवताओं में गुण है। ब्रह्मा रजगुण, विष्णु तमगुण और रुद्र तमगुण, ये शिव तमगुण। ये तीनों देवताओं में तो गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, ये सोचने की बात है। ये चौथा शिव कौन है फिर? ये शिव काल है, ब्रह्म है जो इनका पिता है। चार हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं में तो गुण है, परंतु शिव गुणातीत कहे गए हैं, ये चौथा इनका पिता, इन दिन तो दूर रहता है। इनको गुण युक्त करके ये चुप हो गया, एकांत में जा बैठा। ये अब जैसे मिर्च बना दी, अब मिर्च का क्या दोष है? वो तो मुंह जलाएगा उसका, वो तो गुण हो गया उसमें मुंह जलाने का। अब जैसे इन तीनों भगवानों को पैदा करके इनको भेज दिया एक एक लोक में। अब जैसे किसी मकान में तीन कमरे हो, किसी मकान में जैसे रसोई के अंदर छोंक लगा मिर्चों का, और उसकी जो है ना तीसरे कमरे में छीकम छीक हो रहे बैठे हुए। अब मूल वस्तु तो रसोई में, और गुण पहुंच गया तीसरे कमरे में, उसका वहां मूल वस्तु का इफेक्ट उस तीसरे रूम में जाकर थर्ड रूम में, और वो इफेक्ट कर गया जो मिर्च का होता है। ऐसे ये भगवान अपने मूल स्थान पर है, अपने इन में रहते हैं तीनों लोकों में, और वहां से उनकी रेंज है, जैसे मोबाइल की रेंज होती है। इनकी तीनों गुणों की तीनों लोकों में अपने अपने हिसाब की रेंज है। जैसे जो से भी कंपनी का मोबाइल फोन लोगे उसकी अपनी अपनी रेंज नारी नारी पाओगे, उसी क्षेत्र में हरेक में उनकी अलग होगी। ऐसे ही समझो। अब इसका प्रमाण आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, ये और प्रमाण देता हूँ। उसके बाद आज की ये तो भूमिका बने से सत्ज्ञान को समझाने की, इन प्यारी आत्माओं को अगर ये ना समझाऊं तो आपको कुछ भी समझ में ना आवे और आपका मन दुखी रहे। आए थे सत्संग में और लग गए उठपटांग सुन, क्योंकि देखो बजले रे भगवान तेरे काम आओगे, ये तो आपको ज्ञान ही है। इतना तो आपके हृदय में तड़प है कि भाई भगवान के भजन बिना जीव का मनुष्य जीवन व्यर्थ है, और उसी के लिए तो आप ट्राई कर ही रहे हो, संतों के सत्संग भी सुन रहे हो, कितना कोई भक्ति भी कर रहे हो कहीं न कहीं जाकर। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि जिस स्थान पर हमने पहुंचना है ये हमारा रास्ता ठीक है कि नहीं, तभी तो सफर करने का अच्छा लगे। और जब तक हमें ये नहीं मालूम जी रिश्ता हम चल रहे हैं और फिर भाग रहे स्पीड से, तो उसका क्या फायदा, वो व्यर्थ है। पहले तो आज चार दिन के सत्संग में ये निर्णय होगा कि हमारी दिशा भी ठीक है कि नहीं है, वो नक्शा है सही कि नहीं जिस रास्ते हमने जाना था। तो ये पवित्र शास्त्र आपके सामने मैप समझो, ये मैप बना रखे हैं, इन मैप के आधार पर चलना हमने। अगर उस तरह चल रहे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा चलते रहना, और आपको ये पता भी लग जाएगा कि रास्ता नहीं हमारा, फिर उससे वापस हो लेना समझदारी होती है। उस पर एक अनाड़ीपना करना कि नहीं हम तो इस पर जाएंगे, गुरुजी ने बता रखा है। अब देखो चारों इन शास्त्रों से ज्यादा कोई गुरुजी नहीं जान सकते, ये उनकी भूल है, क्योंकि वेद भगवान ने बोले, गीता भगवान ने बोली। अब भगवान जैसे मैं रोहतक रहता हूँ, मान ले क्रोथ आश्रम में, और कोई मेरे से पूछे महाराष्ट्र से गए हुए हो कि आप कहाँ से आए हो, तो क्रोथा आश्रम का जो एड्रेस मैं दे दूंगा, आम व्यक्ति नहीं दे सकता, महाराष्ट्र वाला चाहे वो कितनी बात बनावे, तो मैं अपना पूर्ण विवरण दूंगा कि वहां से यहाँ से वहां चलना, वहां से वो फिर दिल्ली पहुंचना, दिल्ली से रोहतक जाना, रोहतक जाते समय रास्ते में कई स्टेशन आओगे, बहादुरगढ़ आएगा, फिर सांपला आएगा, वही फिर वो अपना रोहतक आएगा, रोहतक से फिर क्रोथा आओगे। तो वो मैप बना के मैं दे आया, आपने तो उस पर चलना था, अनुभव नहीं बनाने थे अलग से। अब वहां से कोई चल पड़ा और वो दूसरी दिशा में चला गया और पहुंच गया कि मद्रास में, महाराष्ट्र से मद्रास पहुंच गया, वहां अनुभव बनाता, कहता मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, करोथा पहुंच चुका हूं। भाई करोथा का ही रास्ता तो कोई ना, जो से स्टेशन था बता रही है करोथे वाले मार्ग में है नहीं, क्योंकि ये मैप सामने रहा। तो वो जो उसने अपनी सोच के गलत स्थान को गलत बताकर अपनी सोच के शास्त्र बना दिए, वो गलत है। अगर वो उस मैप से नहीं बनते, क्योंकि जैसे कबीर परमेश्वर आए और अपने सतलोक की वो मैप बना गए अपनी पवित्र वाणी तय कि ऐसा करना ऐसा करना, आगे ऐसे आना, वहां से त्रिकुटी पे आना, त्रिकुटी से पहले तो अपने यहां से नीचे के इन कमलों में से आना और फिर वहां मैं ऐसे सखीथी करूंगा आपके लिए, फिर परब्रह्म और परब्रह्म के लोक को छोड़कर और फिर सतलोक पहुंच जाना। अब उससे अलग कोई अनुभव बना हुआ गलत बना रहा है, क्योंकि उस मैप से नहीं मिलता तो वो मार्ग ठीक नहीं है, जो मैप भगवान खुद बना के देंगे। ऐसे गीता जी में ब्रह्म ने अपने तक के पाने की श्रेष्ठ विधि लिखी है, और इससे अलग कोई मैं अपने अनुभव बनाए बैठा है। ये उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? एक व्यक्ति विशेष ऋषि विशेष की अपने अनुभव, जितना भगवान ने उसको भगवान को उसने समझा, अपना एक्सपीरियंस हुआ, जितना फेरट उसने किया, और वो अगर उस मैप से नहीं मिलते हैं, वेदों और गीता से नहीं मिलते हैं, तो वो उनके अनुभव ठीक नहीं है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश है और ये महर्षि दानंद जी का की तरफ से उपनिष्ठ हो गया, और इन्होंने जितना जैसा भगवान को अपनी सोच से जाना अनुभव से, और वो अगर वेदों से ये नहीं मिल पा रहा पूरा, तो ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन उस मैप से नहीं मिलता है तो ये दिशा गलत है। ऐसे ही जो उपनिष्ठ क्या चीज होती है, यही होते हैं, जैसे एक व्यक्ति विशेष का अपना अनुभव, जैसे दास ने सभी महापुरुषों के जो आज वर्तमान में लाखों और करोड़ों की संख्या में शिष्य बनाए हुए हैं, वो महिमा तो गाते हैं सतलोक की और मार्ग में स्टेशन बताते हैं गलत, दूसरे बता रहे हैं, तो इससे दास को चिंता हुई कि ये तो इस मैप से नहीं मिल रहे। जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया, परमेश्वर सतपुरुष ने, पूर्ण परमात्मा ने, कबीर साहब ने 600 साल से पहले कोई भी दिखा दो सतपुरुष या सतलोक की महिमा बताने वाला, एक अक्षर दिखा दो किताब, क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं आए थे, उन्होंने अपना मार्ग आपा बता के चले गए, और ये चारों वेद गवा दें और उस पवित्र परमेश्वर की अपनी वाणी गवा दें, और जिन महापुरुषों ने, जिस पुण्य आत्मा ने परमात्मा को सतलोक देखा और साथ में या काशी में जुल्हे का काम करते हुए भी देखा, उन्होंने गवाही दी उसकी, तो उन पवित्र आत्माओं के, जैसे गुरु नानक देव जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय रामानंद जी, आदरणीय श्री मुलुकदास जी, इन महापुरुषों के, छह महापुरुषों के कभी प्रत्यक्ष प्रमाण और सेम टू सेम उस परमेश्वर के पाने की विधि और वो रास्ता यानी मार्ग सही मिलता है। तो ऐसा वो ठीक है, उन्होंने अनुभव नहीं, उन्होंने यही बताया कि परमात्मा के पाने का यही तरीका है, और उस मूल शास्त्र से मिलते हैं, वेदों से मिलते हैं और पवित्र गीता जी से मिलते हैं, तो फिर कोई शंका नहीं रही। और इसे विरुद्ध जो बता रहे हैं, उन अन्य संतों के इनसे बिल्कुल विपरीत है, एक भी असटैब भी नहीं मिलता, तो इसलिए वो शास्त्र के विरुद्ध है और उस परमात्मा के जाने वाला मार्ग नहीं है। तो अब फिर सोचना होगा, चाहे कितनी दूर चलेगा इंसान, न सोचे या सफर गलत होगी, क्या फायदा इतनी मेहनत का, तो कितनी मेहनत और जितनी करोगे व्यर्थ है, क्योंकि अपोजिट दिशा है, वैसे तो वापस होने में आपका श्रेय है, नहीं तो अश्रेय है, ये आप स्वयं से फैसला करोगे। अब क्या है जो प्रश्न चल रहा है, हमने चार दिन में यह फैसला होगा कि हमारी दिशा अकॉर्डिंग टू द मैप भी है कि नहीं है, और मैप आपके सामने बिल्कुल बता दिया जाएगा, और फिर आप प्रेम पूर्वक निष्पक्ष भाव से उसको फिर सोचना, और फिर 10 कदम भी रखोगे ना मंजिल की तरफ होगी, 10 कदम भी, चाहे थोड़ा भी सिमरण करोगे, थोड़ा भी विधि अपनाओगे, तो भी अपना सफर तय हो रहा आपका, और स्पीड लगा दोगे तो कहना है कि फिर तो शीघ्र मंजिल आ जाएगी, फिर तो करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए देवी भागवत महापुराण आपको दिखा जाएगा, इसमें क्या है, इसमें दो बात सिद्ध होंगी, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नहीं मालूम हमारा पिता कौन है, हम क्यों किस प्रकार उत्पन्न हो गए, और तीसरी ये होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हम तो नाशवान है, हमारी जन्म और मृत्यु होती है और हम गुण युक्त हैं, ये पवित्र शास्त्र आपको ये सिद्ध करेगा। पवित्र शास्त्र देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इनके अनुवादकर्ता संस्कृत से हिंदी में जिन्होंने अनुवाद किया है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से इसका प्रकाशन है। इसकी जो है ना मुद्रित है यहां से छपी है ये, और गीता प्रेस गोरखपुर की जो छाप लगी है वो हिंदू समाज को बिल्कुल ISI मार्क के तुल माना जाता है और ऐसा ही है। अब इसमें जो चीज है वो भी आपने फिर सही माननी चाहिए, जिसमें जो लिखा हो भी सही है, उसमें कसर नहीं मिलेगी तो वो सही है, और आप उसको विपरीत सुना आज तक तो फिर सुनाने वाले ऐसे ही थे, जिसके कारण आपने फिर अपने आप को चेंज करना होगा, बदलना होगा। ये देखो तीसरा स्कंद, मेरे पास संस्कृत सह संस्कृत भी रखी है और ये केवल हिंदी है। तीसरा स्कंद यहां देखो, कितने ही आचार्य भवानी को दुर्गा को संपूर्ण मनोरथ करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य करने वाली प्रकृति है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ये पवित्र गीता जी के जो अनुवाद होगा उसमें आपके यू काम आवेगा। ब्रह्म के साथ, ब्रह्म माने काल ज्योत निरंजन, ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है, यानी अभेद माने जैसे पति पत्नी रूप में पत्नी को अर्धांगनी कहते हैं, स्पष्ट किया कि वो उनकी पत्नी है, उनका अभेद संबंध है। अब देखो यहाँ पर नारद जी पूछ रहे हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी अपने बेटे नारद को बता रहे हैं। क्या पूछा ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे पिताश्री, इस एक ब्रह्मांड की रचना क्यों कर, इनको एक ब्रह्मांड की भी रचना का पता नहीं, ना ब्रह्मा ने ना विष्णु ना शिव ने, और ना इन सतलों की महिमा गाने वाले संतों ने जो आज दुनिया के ना जाने कितने प्यारी आत्माओं के ये जो है ना मुखिया बने हुए, इस एक ब्रह्मांड की भी रचना इन ब्रह्मा विष्णु में इसको विज्ञान नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा ब्रह्मा जी? अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा है नारद जी ने, और क्या बता रहा है नारद? नारद को ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है महाभाग। ये इन्होंने क्योंकि ब्रह्मा को आप मालूम नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु ने सुप्रीम मान ने अग्नि शायद ज्यादा जानता होगा, और ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा को, क्योंकि ये तीनों बेहोश पड़े थे, कोई से किसी को भी मालूम नहीं तुम कौन हो कहां से आगे, अभी आपके सामने इसी पवित्र ग्रंथ में आपके सामने आएगा, या आगे तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। आगे क्या लिखता, महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जो इस रहस्य के विदित हो। आगे देखो क्या बताता है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सबसे पहले जब मैं हौस में आया, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथावर जंगम जितने भी प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे, तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं दिए, दृष्टि गोचर नहीं हुए, नहीं दिखाई पड़े, मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। अगर माँ को अपनी मालूम में कैसे उत्पन्न हो गया, चलो होश में आने के बाद जो बता रहा वो ठीक है, उससे पहले की जो ये बोलेगा तो थोड़ी सी तिकड़मबाजी होगी, तुक्के होंगे इसके, कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में संहार करने वाले कौन विशिष्ट भगवान है। पुरुष माने भगवान, पुरुष का पहला अर्थ प्रभु होता है और सेकंड अर्थ मनुष्य होता है व्यक्ति, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को अपना ही रूप दिया है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि नहीं दिखाई देती जिस पर यह जल टिका हो, यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ। अच्छा देखो, तो यो विचार करके 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। ऊपर देखो कमल कैसे उत्पन्न हुआ, इसका कारण तो कुछ तो होगा ही होगा। यो विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो, तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। काल ने आकाशवाणी कर दी, तप करो, हिलाओ मत भाई, प्रेम से रखो, थोड़ा पीछे कर, अक्षर कटने मत दे, बैक कर, बस इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही हजार वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या करते हुए। उसी समय मधु और कैटब नाम के दो भयंकर राक्षस आगे, दानव आगे, और उनसे डर के मैं नीचे फिर फिसल गया। डरता नीचे कमल की डंठल पकड़ के वे मावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत तो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतम्बर पहने थे, चार भुजाएं थी। ये कौन थे? शेष नाग की सैया पर सोए पड़े थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा और पदम इन चार अविधों से ये भगवान विष्णु थे। बेहोश पड़े थे, वहां शेष नाग की सैया पर लेटा दिया इनको। अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वसीबत होकर गाढ़ी नींद में सोए थे। ये बेहोश पड़े थे। बेहोशी शक्ति का या दुर्गा स्वयं इसमें प्रवेश कर जाती है अन्य रूप बनाकर, भूतनी की तरह, प्रेतनी की तरह। जैसे काल प्रवेश कर जाता है कभी श्री कृष्ण में, कभी किसी ऋषि में, तो अपना ज्ञान दे देता है। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह से यानी शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजने लगी। दिव्य आभूषण यानी एक भूतनी की तरह उसमें प्रवेश करगी। बाहर एक औरत का रूप बनाकर खड़ी होगी। गहने उसकी छवि बढ़ा रहे थे, उसके गहने देव आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। और जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से वह प्रेत आत्मा की तरह निकल गई तो भगवान विष्णु होश में आ गए। अलग होकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। कब मरे? भगवान विष्णु पर 5000 वर्ष तक दो राक्षस नहीं मर पड़े। इससे भी सिद्ध होता है कि ये समर्थ शक्ति नहीं है। और वो मरे भी कब? जब देवी ने नीचे आके एक सुंदर औरत थी उसकी तरफ ये दोनों नीच आत्मा बुरी नजर से देखने लगे। उनका ध्यान युद्ध से हट गया। तब पीछे से भगवान श्री विष्णु ने पकड़कर उनको मौत के घाट उतारा। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लटाकर उन्हें वहीं प्राण रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे और रुद्र भी वहीं प्रकट हो गए। अब तीनों इकट्ठे कर दिए। ये काल का जाल है। इन तीनों को बेहोश किया हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटी सी उम्र में जो पैदा होते ही, और फिर ये होश में जवानी तक इनको बेहोश रखा। तब तक इनकी परवरिश करते रहे। ये काल ने इस दुर्गा को ऐसे विवश करवा के ये इनसे करवा रहा दुर्गा से। अब क्या कहते हैं कि हम तीनों को भगवती अद्या शक्ति के दर्शन हुए, उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर अब तीनों देवताओं को माँ आदेश दे रही है। तुम बड़ी भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये केवल तुम्हारे काम है। सृष्टि माने जीवों की उत्पत्ति, विषय वासना पैदा करके, और स्थिति एक दूसरे मोह ममता पैदा करके, और संहार माने इनकी मृत्यु करके अपने पिता काल के पास 1,00,000 को रोज भेज देना। ये तीनों भगवानों की कर्तव्य है। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम अपना स्थान बनाकर शांति पूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य से चार प्रकार की प्रजा का उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्यात्म शक्ति की वो वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने उस वह शपथ सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार इन सर्जन कार्यों के प्रजाओं के सर्जन कार्य आदि कार्य करने सफल हो। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है, पंचभूत आदि कुछ भी नहीं है। हमारी बात सुनकर वह कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुख मंडल मुस्कान से भर गया। इतने में सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भय होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया। और उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर बैठ गए। आगे देखो, हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। और कहां पहुंची? जैसे अभी आपको दिखाया था, अब एक बार फिर दिखाना होगा, वे इसी ब्रह्मलोक में कहां पहुंचेंगे? इसी ब्रह्मलोक में। ये पैदा इस यहां पर एक बहुत बड़ा सरोवर है, समुद्र, यहां की तो सारी पृथ्वी मिला दे इतना तो समुद्र है वहां पर, तो यहां एक समुद्र है इस स्थान पर, यहां इनको तीनों को इकट्ठा किया था, यहां से विमान में बैठा के दुर्गा ने फिर इनको यहां पहले इस लोक में, फिर इस पहले रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, फिर तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, फिर यहां लाए। एक एक तो विमान में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश और एक एक ब्रह्मा विष्णु, ये काल ने वहां फिर और रूप बना लिया। आ गई न फिर इनको ये समझाने के लिए, कहीं तुम अपने आप को सुपीरियर ना मान बैठो कि तुमसे परम शक्ति और भी है, कहीं दिमाग खराब ना हो जाए। इसलिए दुर्गा ने, काल ने दुर्गा के माध्यम से इनकी बुद्धि सेट करने के लिए घुमाया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, पहले तो इस महास्वर्ग में पहुंचा। नीचे देखो, वहां कौन थे? देखा तो वहां महाभाग इंद्र थे, एक महास्वर्ग में भी इंद्र है, एक नीचे वाले स्वर्ग में इंद्र है। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सती विद्यमान थी। आगे देखो, ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने बेटे नारद को, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ये ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ये सारा ब्रह्मलोक है जितना आपने देखा संपूर्ण। आगे वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे, एक ब्रह्मा और देखा जब उसे सतो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचे ये, तो वहां एक ब्रह्मा और था, उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु का कोबड़ा आश्चर्य हुआ। आगे देखो, सभा लगी थी, भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं, सृष्टि की अधिष्ठता ये कौन है, भगवान मैं कौन हूँ, ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है, इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। ब्रह्मा को आप नहीं मालूम है कौन हो रही और ब्रह्मा कौन है। आगे देखो, इतने में मन के समान तीव्रगति तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से आगे देखो, वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले, वो नंदी वृषभ पर विराजमान थे, बैठे थे। एक एक दो विमान में बैठे हैं और एक एक और देख रहे हैं, ये काल के जाल हैं, ये जहां वो पहुंचते हैं उससे पहले आगे जाके ये दोनों वो स्वरूप बना लेता है अपना और इनको भ्रमित कर रहा है। आगे देखो, यहां देखो नीचे, अब पहुंचे कहां पर? रक्षण वर्ग के बाद ये तीसरे स्थान पर सतोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचे। बाद वह विमान उस शिखर से पवन के समान तेज चाल से उड़ा बैकुंठ लोक में पहुंच गया, उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचा जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। ब्रह्मा कह रहा अपने बेटे पुत्र नारद को, उस उत्तम पुरी को देखकर जो हमारे साथ विष्णु बैठा था विमान में, विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां एक कमल लोचन एक विष्णु और बैठा था, श्री हरि विराजमान थे। अब इसके बाद ये विमान कहां चला? इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया, कहां एक अमृत के समान मीठा जल वाला समुद्र मिला। वहां देखो, वहां क्या देखा उन्होंने? वहीं एक मनोहर द्वीप था, उसमें एक मनोहर द्वीप था और वहां पर कौन बैठे थे? उस पर सुंदर पलंग को हमने देखा, उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। ये दुर्गा ने जाकर वहां अपना रोल दूसरा कर दिया, दूसरा रूप वास्तविक रूप बना दिया, बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी आदि आदि। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों और करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक सुंदर थी। अब यहां देखो, विमान की वहां पहुंचते ही हम उतर रुक गए और विमान से नीचे उतरने का संकेत मिला। हम आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है, हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इसके ऐसे ऐसे। नीचे देखो, नारद यो संदेहग्रस्त होकर हम लोग रुके रहे, तब भगवान विष्णु ने, काल ने भगवान विष्णु में प्रेरणा दे दी, पिछली चेतना दे दी। भगवती तब भगवान विष्णु ने चारू साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। ये दुर्गा है, अपनी माँ है। और तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, ये अपनी माता है। महामाया, महाविद्या, महामाया इनके नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता में आपके प्रकृति शब्द याद आओगा। इसके बाद क्या कहता है भगवान विष्णु, कहाँ पहुंचे? भगवान विष्णु कहते हैं कि ये वही देवंगना है, देवंगना ये वही देवी है जिनके मुझे पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। पर्यावरण माने जब पानी ही पानी, समुद्र समुद्र था। उस समय मैं बालक रूप में था, मैं छोटा सा बच्चा था और मुझे पालने पर झुला रही थी। वट वर्ष के पत्थर पर सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। आगे फिर क्या बताते हैं विष्णु जी, आगे अपनी माँ की महिमा गाते हैं। ये तीसरा स्तंभ चल रहा है, तीसरा सकंद ही चल रहा है। और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माँ की महिमा गाता है, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब तीन बात सिद्ध होगी इसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होती है। भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, अर्थात हमारा आपसे ही जन्म हुआ है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता, हम तो जन्मते और मरते रहते हैं, केवल तुम ही नित्ता हो और जगत जननी हो, सबकी माँ हो, प्रकृति और सनातनी देवी। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रगट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब क्या सिद्ध हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और इनका जन्म और मृत्यु होता रहता है, और दुर्गा इनकी माँ है। ये इन तीन बात क्लियर होगी, ये स्पष्ट हुआ। अब इन तीनों, ये तीनों देवता गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिवजी। इसके लिए फिर और प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। वैसे तो शिव महापुराण ने भी क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि तीनों देवताओं में रज, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं में एक के गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। फिर भी और प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए एक पवित्र शास्त्र आपको फिर दिखाया जाएगा, श्री देवी भागवत महापुराण सह संस्कृत, हिंदी और संस्कृत दोनों साथ ही साथ है। अब देखो मेरे सामने क्या समस्या आई है कि जिन पहले जिन महापुरुषों ने जो भी प्यारी आत्माओं को बताया, इन घोड़ी आत्माओं ने उसको सत माना। क्यों माना? क्योंकि उन्होंने इतना पता है कि संत झूठ नहीं बोलते, साधु झूठ नहीं बोला करते। और अब आपको पता लगेगा कि अब तक के साधुओं ने सच बोला ही नहीं। अब ये समस्या होगी कि इस सत्य को आपके हृदय में सच बताने के लिए इस दास ने ये इतने प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। और शुरू में ये भी महसूस होता आप लोगों को कि ये महाराज जी तो सबकी निंदा ही कर रहा है यार, और ये भी आपकी आत्मा थोड़ी सी दुखाने का भी मैं अफसोस करता हूँ, लेकिन मजबूरी होगी। जैसे सेना वैद्य डॉक्टर होता है, वो मरीज की नहीं सुना करे, वो रोवे चाहे राजी रहे, उसका वो जख्म न उसने करके ठीक ठाक और फिर सही इलाज करेगा, नहीं तो पैर कट जाता नादान डॉक्टरों के सारे। तो अब देखिएगा श्री मत देवी भागवत, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम स मातम, ये वही देवी भागवत महापुराण है, ये स संस्कृत है। इसमें इसका लेखक खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बंबई। और इसमें देखिएगा तीसरा सकंद, ये दूसरा अंत होता है ऊपर और तीसरा यहाँ पर आरंभ होता है। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब देखिएगा इसमें भगवान शंकर स्वयं बोल रहे हैं, ये सातवां मंत्र समाप्त होता है, सातवां श्लोक समाप्त होता है, आठवां की हिंदी प्रारंभ होती है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर जी कह रहे हैं, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया आपने? फिर देखो, ये ऐसा नया ज्ञान है, एक बार तो समझ में भी ना आवे, कहीं गुरुजी जादू जंतर तो नहीं करके। हे माता, हमारे यदि हमारे ऊपर शंकर जी बोल रहे हैं सदा दयायुक्त हो तो आप हमको मुझको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब संस्कृत देखो साथ में, यहाँ पर सातवां श्लोक मंत्र अंत हुआ, आठवां मंत्र श्लोक प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना ने सदाम्बिके कथम अहम वीत मेरे को क्यों बना दिया तमोगुण? तमोगुण ये स्पष्ट दिखाई देता, कोई छू मंत्र की बात नहीं। तमोगुण कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण यानी रजोगुण क्यों बना, संभव क्यों बना दिया? और सुहिता किमो सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सतोगुण किस लिए बना दिया अगर आप दयालु हो? अब देखो, क्योंकि ये माँ है और माँ को ये तो मालूम है कि मेरे बेटे हैं, और माँ को ही पता अपने बच्चों की ममता का, लेकिन यह मजबूर है उसे काल के अधीन होकर इसने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। एक तो जबरदस्ती बच्चे उत्पन्न करवावे, दूसरा उनका मोह बनाए रखकर तीसरा मारे। अब इनको भी मालूम है इस बात का, शराबी ने सारा पता हो तो शराब पी रहा है या गलती है, जुआरी ने पता होता जुआ खेल तेरा नाश होगा, और लेकिन फिर भी ना डटा जाता क्योंकि वो मजबूर आदत वश बना दिया। ऐसा इन तीनों को मजबूर है ये भी, इनके अंदर गुण भर दिया, इनके वश की बात नहीं। अब ये अपनी माँ से पूछे, माँ यदि आप हमारे पर दयालु हो, एक तरफ तो आप हमें बहुत प्यार दे रहे हो और ऊपर से हमारे से ऐसा जुल्म कर्म करवा रहे हो, किसी का बेटा मरे किसी की बेटी मरे, ये तो अपना परिवार समझ रहे हैं और हम इसको मार डालते हैं, तो इसलिए पूछ रहा है डरता डरता, क्योंकि ये इनको धोखा देकर रखता है काल, और जिससे ये भयभीत रहते हैं बेचारे तीनों देवता भी कहीं तुम्हारे ऊपर आपत्ति ना गा जाए, क्योंकि वो जब कहते हैं फिर माँ का आसन डिगा जब सुनी काल की गाज, उड़ा दाड़ा यू अपने लोक माता जब सबके छक्के छूट जाते हैं। ये तो डरता पूर्ण परमात्मा कबीर साहब से है, उसके सामने तो सीधा हो जाता है जैसे हाथी डरा करे बब्बर शेरते है। अब क्या सिद्ध हो गया कि तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये दास आपको सातवें अध्याय का गीता जी का चार पांच श्लोक सुनावेगा। अब इस गीता जी के सीधा सुनाऊं तो आप सारे उठकर चले जाते, केवल हमारे सेवक सेवक डरते, और अब ये सुनाऊंगा तो आपके हृदय में वो जगह बनेगी, आप इतनी आपने रात में नींद नहीं आओगी जो भक्ति चाहता है कि हम कहाँ खड़े थे परमात्मा देख के बन रही थी हमारे साथ में। अब इस चार पांच श्लोक सुनाने के लिए इतनी बड़ी भूमिका ये डेढ़ घंटे की तैयार हुई है, अब तो ये दास ही सत्संग करने योग्य हुआ है, आपको इतना तैयार किया है, और जब दो चार सत्संग सुन लोगे फिर हमारा सत्संग दूसरे ढंग से शुरू होया करेगा, फिर तो सीधा ही गीता जी से शुरू करा करेंगे। जब सब समाज समझ जाएगा देखो गीता जी में ऐसा लिखा है भगवान, अब ये उसी से लिंक है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं वो ना परम गति को ना सिद्धि को ना उनकी कोई सुख हो, अर्थात उनका यूजलेस एफर्ट है, यानी बिल्कुल उसका प्रयत्न वो बिल्कुल लाभहीन है। जैसे गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थोथा वो छड़े किसाना, थोथे उसने कुटन पे प्रयत्न अधिक पर आउटपुट उसका लाभ गति नहीं। अब यहाँ देखिएगा जैसे नौवे अध्याय में लिखा है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाते, मेरा पूजने वाला मेरे पास, भूत पूजने भूत बने, पितर पूजने वाला पितर, तो ये नहीं करने। अब कौन कौन और नहीं करने, सोलह में जाए कि चौबीसवें श्लोक में लिखा है कि इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी जो भक्ति के कर्म करने हैं और नहीं करने हैं ये शास्त्र प्रमाण देंगे, किसी व्यक्ति विशेष या ऋषि विशेष की मत मानना। अब ये पवित्र शास्त्र आगे क्या फैसला दे रहा है कि तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी मूर्ख लोग करते हैं। अब ये देखिएगा तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जचाने के लिए आपको इतना बड़ा एक भूमिका बनानी पड़ी इस पवित्र सत्संग को आगे जारी करने के लिए। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है अध्याय नंबर सात का, और देखो श्लोक नंबर बारह से शुरू करेंगे। अध्याय नंबर सात और इधर देखिएगा बारह नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। काल कह रहा है ज्योति निरंजन, गीता ब्रह्म बोल रहा है वो चौथा जो आपने शिव पुराण में देखा था, और भी जो सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी विष्णु से सतीथि जो हो रही है इन जीवों की, और जो रजोगुण से, रजोगुण माने ब्रह्मा से जो उत्पत्ति हो रही है, और तमोगुण और विष्णु से जो शिव से सहार हो रहा है, होने वाले भाव हैं उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी आपने शिव महापुराण में देखा था कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश में तो गुण है, और वो शिव जो है वो गुणातीत है, वो इनसे न्यारा रहता है, वो 21वें ब्रह्मांड में और हर एक ब्रह्मांड में इस ब्रह्मलोक में अलग रहता है इनसे, और तीनों पुत्रों को अलग रखता है कि उनमें वो मुझ में नहीं है। आगे देखो अब 13वें में क्या कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस। गीता जो है ना एक सांकेतिक शास्त्र ज्यादा है, क्योंकि चारों वेदों का सार संकेतों से समझाया जाएगा, और इसको वही समझा सकेगा जो वेद न जानता है। गीता में ये प्रमाण दूंगा कि भगवान ये खुद गीता बोलने वाला कि पूरा ज्ञान मेरे पास नहीं है, वो तो वो संत देगा, और वो संत तत्वदर्शी वो होगा जो इस वेद के तात्पर्य को सही जानने वाला होगा। गुणों के कार्य रूप यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से इन चारों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। काल कहता है कि इन तीनों भगवानों से ऊपर जो मैं हूँ, यानी जैसे मुख्यमंत्री कहे कि इन मंत्रियों से ऊपर मैं हूँ, ये नादानी नीचे के अधिकारी और मंत्रियों तक सीमित हैं, ये क्षीणिक सुख देते हैं एक हिस्से का, और मैं फिर इनको अच्छा लाभ दे दूंगा इन मंत्रियों से भी, तो कहते ये मुझे नहीं जानते। आगे देखो अब 14 और 15 में कमाल कर दिया है परमेश्वर, इतना निर्मल ज्ञान इस पवित्र शास्त्र का शायद इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्म तक का ज्ञान शायद क्या बिल्कुल है ही नहीं कोई ज्ञान इस परमेश्वर इस गीता के समान, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया गया जाल, और इन्हीं तक की भक्ति से अक्षणिक सुख या संसारिक छोटा मोटा लाभ, फिर ये नकली स्वर्ग और फिर तुरंत नरक और 84 लाख जोनियो पशु, कहते ये जाल है इन तीनों गुणों के द्वारा। इस त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, और जो मेरी भक्ति करता है, जो पुरुष केवल मुझको निरंतर बजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, वो इस माया से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। अर्थात जैसे कोई भी मुख्यमंत्री से मेल कर ले तो मंत्रियों से अच्छी राहत प्राप्त कर लेता है, ऐसा समझो। अब देखो 15वें में तोड़ कर दिया, ओए होए कति निष्कर्ष निकाल दिया जूस इन चारों श्लोकों का, पांचों का। काल भगवान ब्रह्म ज्योत निरंजन ये सदा शिव कह रहा है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि टिकी हुई है, इनकी पूजा में इनसे मिलने वाली राहत से ही वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच असुर राक्षस, हे परमात्मा असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मूड और मुझे नहीं बजते अर्जुन, वो मेरी भक्ति भी ना करते। फिर देख लो एक बार, अब इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं ना, हमारा भी कलेजा हिल रहा है, हे परमात्मा जब ये ज्ञान ना होता तो हम कहाँ कीचड़ में फंसे पड़े थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करके विनाश को प्राप्त हो रहे थे। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनकी बुद्धि यही तक सीमित है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, असुर राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच घटिया व्यक्ति जो विधिवत साधना ना करते और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग माम ने प्रपदनते, वो मेरी पूजा भी ना करते। अब देखो जानते हैं अब क्यों कहा भगवान ने ऐसा, ब्रह्म बोल रहा है ये, और ये आपको बताया जा रहा है कि शास्त्र में कौन से कर्म करने के हैं भक्ति के, कौन से ना करने के, इसलिए इसके आधार पर करोगे सफल है तो नहीं तो ऐसा करो। जैसे रावण ने, लंकापति रावण ने, अब एक बात और सोचने की यहाँ पर आपने, हमने ये नहीं देखना रावण बुरा था, राम ठीक था, कंस बुरा था, कृष्ण ठीक था, हमने देखना है कि वो बुरे हुए क्यों, किस कारण से बुरे हुए। वो जैसे रावण को उनको गुरुदेव ऐसे मिले और गुरुदेव ने अच्छा देखो, रावण खुद ब्राह्मण जाति में और विद्या पढ़ा करता था, लेकिन फिर भी कितना वेद पढ़ लो जब लोग संत से ही ना मिलेगा इसका निष्कर्ष नहीं निकला होते। अब गुरुजी भी उनके गुरुजी भी थे, किसके? रावण के। और गुरुदेव ने बता दिया कि बेटा ये सदाशिव है ना, महाशिव, ये बस सब कुल मालिक है और इसका ओम नमः शिवाय मंत्र है, बेटे ले बेड़ा पार हो जाएगा, तो इसकी भक्ति कर ले। अब परमात्मा को चाहने वाली आत्माओं की कमी किसी युग में नहीं रही। अब रावण ने अपने गुरुदेव की बात को सत्य मान के, और क्योंकि आप निष्कर्ष नहीं निकल सकता जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही आकर अपना सत्य ज्ञान ना देंगे, इतना ये सारे ऋषि आज तक सब फेल थे, उस परमात्मा की रजा से आज यह बात फिर समझ में आ रही है। तो क्या समझा रावण ने? गुरुदेव के आदेश से प्रभु के पाने की तरफ में और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते, और यहाँ से 10 बार समर्पण कर दिया। एक बार कोई उंगली काट कर दिखा दो शिव के पुजारी, तो शिव जी को अपना इष्ट मान कर सर्वेश्वर महेश्वर कह उनके गुण भी गाते हैं और चेल शिष्य भी बनाए बैठे, वो संत करके दिखा दो, एक उंगली नहीं काट कर भगवान के नमः चढ़ा सकते। और उस रावण ने एक गुरु गलत मिल जाने से, वो एक पुण्य आत्मा थी, और गुरु गलत मिल जाने से वो राक्षस का ला गया। अब जिस जमीन में कोई भांग बीज दे, जमीन का दोष क्या है बेचारी का? वो तो बीजने वाले की मूर्खता है, ये क्या कबाड़ बीज दिया, गेहूं बोने चाहिए थे, उसमें कनक बीजनी चाहिए थी, वो अच्छी होती। तो उसने गुरुदेव के आदेश अनुसार प्रभु पाने के लिए और 10 बार समर्पण कर दिया, मेरा भगवान प्रसन्न हो जाना चाहिए मेरे तन से, मेरा शीश भी चला जा। अब कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जाए वह जाते गजराज। और भगवान शिव भी जैसे एक मंत्री है एक विभाग के, तो ये भी कोई पावर कम नहीं, लाभ ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये इतनी ही दे सके हैं जैसे उसको सिद्धि दे दी और फिर उसके उसमें उसको रिद्धि दे दी, यानी धन दे दिया छोटा थोड़ा बहुत क्या मां, इतना दे दिया कि उसकी बुद्धि खराब होगी, इतना दे दिया कि रावण के राज्य में ऐसे जैसे अपनी मंडियों में धान और गेहूं और कणक, यानी ये बाजरा ज्वार पे कहना, ऐसे वहां पर हीरे मोती भी क्या करते रावण के राज में, और सिद्धि होगी आकाश में उड़ने की। उस सिद्धि का दुरुपयोग किया कि अपनी माँ उठा ली, सीता ने उठा लिया न कमी आत्मा, अब हो गया राक्षस स्वभाव, आखिर में कुत्ते वाली मौत बढ़िया राक्षस कहलाया। इस तमोगुण का उपासक, ऐसा उपासक तो आप 70 जन्म नहीं हो सकते जैसा रावण था, जो आज शिव के पुजारी। और उस शिव के पुजारी को क्या उपाधि मिली? जो गीता जी में लिखी वही मिली, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है वो ना तो परम गति, उसको गति हो ना सुख हो ना उसको कोई सुख हो ना उसकी कोई सिद्धि हो, यानी उसको कोई काम नहीं बने जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहा था, यानी मुक्ति नहीं बने हो सकती। अब देखो 10 बार उसने शीश दिए, 10 बार भगवान ने वापस दे दिए, इतने ये भगवान वर्क डन ये दे सकते हैं, किया हुआ कर्म ही दे सकते हैं, और इसमें चेंज नहीं कर सकते और ये बुद्धि ठीक नहीं कर सकते। राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मेरा। उसके बाद भगवान शिव तमोगुण का उपासक भस्मागिरी था, आखिर में भस्मा असुर माने राक्षस कहलाया। भगवान शिव के द्वार पे कैलाश पर्वत पे, इसमें जहां शिव का लोक है, भस्मागिरी ने 12 वर्ष तक सिरासन पर नीचे सिर करके ऊपर को पैर 12 वर्ष तक भगवान शिव के द्वार का कति सामने, जहां गेट से बाहर निकलते हैं उसके सामने 500 फुट की दूरी पर वहां तपस्या कर रहा। 12 वर्ष के बाद पार्वती ने कहा कि हे महेश्वर, आप तो समर्थ हो, आप तो दयालु हो, जो चाहो कर सकते हो, इसको दे दो, क्या मांगा आपका सेवक, रोजाना मेरे से देखा नहीं जाता। शिव जी कहने लगे, मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता बेटा, मैं तेरे से प्रसन्न हुआ। भस्मागिरी ने कहा कि मुझे वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, ऐसे नहीं मांगता मैं। भगवान ने बोला, भाई सोचा के मांगेगा, कोई सिद्धि मांग लेगा, सिद्धि दे दूंगा, एक आधी रिद्धि मांगेगा, ये इसे ये चाहिए, क्योंकि पता है जिसके द्वार पे तू खड़ा है इसके पास क्या चीज है, तो ये वही मांगेंगे। तो उसने कहा ठीक है जी, वचनबद्ध हुआ बेटा, मांग क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि खड़ा हो गया फिर तो वचनबद्ध होते ही सीधे पैर करके कहने लगा, भगवान ये कड़ा दे दो, अपना भस्म कड़ा दे दो, जो आपदा आपने पहन रखा है उसमें क्या गुण था भस्म कड़े में, कि किसी के सिर पर रख कर न्यू कर देना भस्म, एक सेकंड में वो जल जाता, आग लग जाती उस व्यक्ति में, समाप्त हो जा, राख हो जाती। अब जब जब बसम कड़ा हाथ में आ लिया ना बसमागिरी के, जब कहने लगे होले शिव जी होशियार अब तुझे खत्म करूंगा, रह तेरा गजब भैया बताओ क्यों खत्म करूंगा, कि पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा तुझे मार डालूंगा, ये तपस्या तबोगुण की साधक के ये विचार है परमात्मा। फिर भगवान विष्णु ने उसको मारा, गंडकनाथ नचा कही, आपको कथा बहुत सुन रखी है। तो कहने का भाव यह है कि बसमा गिरी से बसमा असुर हुआ, राक्षस होया और कुत्ते वाली मौत में रहकर गधा बनेगा। तो यही बताया है कि तीनों गुणों के उपासक असुर भाव को धारण किए हुए, असुर राक्षस मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म, भक्ति के गलत कर्म है ये जो ये कर रहे हैं, और मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब रजोगुण का उपासक कौन था, हरणक्षिपु, ब्रह्मा की साधना की थी। ये तीनों भगवान एक जैसी पावर के हैं, जैसे मंत्री होते हैं ना मंत्री, वो एक रैंक होता है उनका, सेम पावर होती है। अब ब्रह्मा की साधना करके उससे भी इसने सिद्धि मांग ली, हरणक्षिपु ने सुबह मरुना शाम रात मरुना जन्म भाई पशु से ना पक्षी से, तो तथास्तु भाई ठीक है, लेकिन फिर राक्षस बन गया, उसी को पाके फिर राक्षस बन गया, अपने बेटे का दुश्मन हो गया और फिर कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया। ऐसे ही वशिष्ठ, जिसने विश्वामित्र ने भगवान विष्णु की साधना की थी और अपने साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की, मासूम बालका की ने कसाई की तरह ये प्रवचन करते हुए मेरे कालज में जो अनंत धड़क धड़क हुए, परमात्मा संत को आवे और हत्या कर दी एक मासूम बालका की, निर्दोषों को मार डाला, और फिर तो सतोगुण के उपासक विष्णु के उपासक थे। एक और उदाहरण इसी पॉइंट पर देना पड़ता जो यहाँ प्रकृति प्रॉपर फिट है। आज से 300 वर्ष पहले हरिद्वार में हर की पैड़ी पे कुंभ का पर्व बना था, लगा था। वहां पर ये सभी गिरी पुरी वैष्णव नागा साधु अपने अपने मार्ग खेमे में जाकर और स्नानार्थ पहुंच गए, और जब लग्या ऊपर भी का समय आया, सुबह सुबह उठकर वो पूरे के पूरे समूह के समूह चल पड़े अपने अपने यानी हर की पैड़ियों पर स्नान करने के लिए। सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच गए, और नागा महात्मा जब पहुंच गए तो पैड़ियों पर खड़े होकर के बाकियों को संकेत कर दिया कि वहीं रुक जाइए, कोई आगे मत आवे जब तक हम स्नान करें। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम नीवस्त्र हैं, हम वैरागी और त्यागी हैं, हमने कोई दुनिया से लेना देना नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ साधक हैं, पहले हम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधु सतोगुण के उपासक सबसे पहले आए, और ये तमोगुण के उपासक नागा शिव के, तमोगुण के उपासक शिव के ये नागा कनपाड़े नाथ गिरी पुरी ये सारे उसी के हैं। और वैष्णो विष्णु जी के उपासक वो आए सबसे आगे, उनके बाद आगे कहने लगे कि खबरदार जे तुमने जल में पैर दिया था, हम पहले नहाएंगे क्योंकि हम वैष्णो साधु हैं, हम बिल्कुल बहुत ही श्रेष्ठ हैं, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, बिल्कुल नीवस्त्र रहते हो नागा, और नाना ना धोना राख लपेट रखी तुमने शरीर पर, और टट्टी के हाथ भी ना धोते गली जो तुम बाहर निकलो, खबरदार जे पहले नहाए थे। अब नाना धोना तो भूल भाल गए, स्नान सुनून तो गया कुएं में, और मुक्कम मुक्का उसकी लटा पकड़ रहा, उसकी दाढ़ी पकड़ रहा, फिर तलवार निकाल जाए छुरी, कहते हैं 25,000 ये जिनको दुनिया संत कहे, पशुओं की तरह लड़के, बच्चों की तरह लड़के, और कत्लेआम हो गया वहां पर, 25,000 आदमियों का कत्लेआम वह पर भी तो गई बाढ़ में, और वहां पर खून की नदी बह गई है परमात्मा। अब यहाँ परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत न जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनका उपदेशी हो जाए परमात्मा, कहते उनको भी नरक ले जावे हैं। ये है वो वास्तविकता, ये भी व्रत की साधना है यानी शास्त्र गुरु साधना है, ये भी वैदा है, वैदे से भेद अलैदा, ये भी शास्त्र गुरु साधना। कहने का भाव ये है, ये विचार करना पड़ेगा, हमने मजबूर होना पड़ेगा आपने, कि तुम किन महापुरुषों के आड़ लिए बैठे जो आप ही शास्त्र में साधना करके स्वयं नरक के भागी होंगे, क्योंकि वो गीता प्रमाण देती है। अब इसके बाद फिर देखिए।